समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस अंक में शगुन के साथ मैं हूं नवीन, और इस अंक में आज हम आपको बहुत कुछ ऐसा बताएंगे जो दिन भर के लिए आपको तैयार कर देगा। बहरहाल आज का दिन बहुत खास है, यूं तो हर दिन खास होता है, आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज हम सब आज की सुबह देख पाए हैं, है ना शगुन? बहुत
खास है। वेरी राइट, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू।
लेकिन शगुन कल का दिन जो था एक बहुत दुख भरा रहा था, जब उत्तर प्रदेश में एक हादसा हुआ और कई लोग मारे गए। सोचना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए हमें, और क्या कुछ करना चाहिए ताकि हम इन सब हादसों से बचे रहें। बहरहाल इस अंक में अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि शगुन के पास क्या है।
हेलो नवीन, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड दिस इज दैट टाइम इन द मॉर्निंग, एज नवीन हैज ऑलरेडी टोल्ड यू, वी विल ब्रिंग यू आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein we share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information which is related to this day, that is the 3rd of July. But we'll get to that later, and we'll begin with the headlines first.
शगुन कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में जब हम बात करेंगे तो हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जो जुड़े हैं आज से दिन के, और उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो सब इंस्पेक्टर था, लेकिन सब इंस्पेक्टर ने इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसको फिल्मों में काम करना था, और फिल्मों में उसने ऐसा काम किया कि हम आज भी उन्हें याद कर रखे हैं।
नाउ आई एम क्यूरियस टू नो दैट।
याद दिलाएंगे आपको, लेकिन उसके लिए आपको सुनते रहना होगा हमें अगले आधे घंटे तक। अपने काम करते रहिए, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर दीजिए,
टर्न अप द वॉल्यूम पीपल,
और फिर हम देखिए हम आपको कहां से कहां लिए जाते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश चलते हैं। हाथरस जिले में एक धार्मिक समागम में मची भीड़ में मरने वालों की संख्या 116 हो गई है। ये भगदड़ कल सिकंदरा राव तहसील के फुलराई गांव में कथावाचक भोले बाबा के सत्संग में हुई। भगदड़ तब बची जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं ने भोले बाबा की एक झलक पाने की कोशिश की। अब तक 72 शवों की पहचान की जा चुकी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रूपये के अनुग्रह राशि की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रूपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये के अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अश्विनी वैष्णव विल इनॉग्रेट द ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 इन न्यू दिल्ली टुडे। द टू डे समिट इज टू फीचर अ डाइवर्स अरे ऑफ सेशंस डिजाइन टू ड्वेल डीप इनटू क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एआई एप्लीकेशन, गवर्नेंस एंड फॉर नर्चरिंग टैलेंट एंड स्केलिंग एआई इनोवेशंस। This summit marks a pivotal moment for India as it underscores its commitment to fostering responsible artificial intelligence AI development on a global scale. The ministry said that international delegates, AI experts and policy makers will participate in the summit. On the occasion, Minister of State for Electronics and IT Jitin Prasad will also be speaking at the inauguration.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का ऐतिहासिक लगातार तीसरा कार्यकाल गति और निरंतरता के लिए जनादेश है।
द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हैज ओपन द रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर द नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS फॉर द एकेडेमिक ईयर 2024-25। Education Ministry said the portal is open for one-time registration as well as application for fresh and renewal scholarships. The last date for submission of applications is 31st of August this year. The one-time registration is a unique 14-digit number issued based on the Aadhaar, and it is required to apply for the scholarship. The ministry said the students who have received the one-time registration number can directly apply for the scholarship on the National Scholarship Portal.
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कजाकिस्तान के अस्ताना पहुंच गए हैं। वो कल होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व और भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। कजाकिस्तान के उप विदेश मंत्री अलीबेक बकायेव ने डॉ जयशंकर के आगमन पर उनका स्वागत किया।
The sixth batch of 5,725 pilgrims left Bhagwati Nagar Yatri Nivas base camp in Jammu for the Kashmir Valley to perform pilgrimage to Amarnath Cave Shrine. Chanting Bam Bam Bhole, the pilgrims left the base camp in a cavalcade of 238 early this morning. This included 4,481 men, 1,034 women, 25 children, 173 sadhus and 12 sadhvis, who are female sadhus. Of these, 2,514 pilgrims left for Baltal at 3:25 a.m. and 3,211 for Pehelgam base camp at 3:45 a.m.
बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए पात्र शिक्षकों से स्वनामांकन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन नामांकन भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष जिलों, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर तीन चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से कुल 50 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ये पुरस्कार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए जाएंगे। पात्र शिक्षक मंत्रालय के पोर्टल www.nationalawardstoteachers.education.gov.in पर अपने नामांकन भेज सकते हैं।
Now let's talk about India's first solar mission. Aditya L1 spacecraft has completed its first halo orbit around the Sun Earth L1 point. ISRO said its station keeping maneuver yesterday ensured its seamless transition into the second halo orbit. The Aditya L1 mission, which is an India solar observatory at Langrian Point L1, was launched on September 2, 2023 and was inserted in its targeted halo orbit on January 6, 2024. During its travel in the halo orbit, Aditya L1 spacecraft will be subjected to various perturbing forces that will cause it to depart from the targeted orbit, the space agency said.
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग पारिवारिक पेंशन से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए इस महीने एक विशेष अभियान चला रहा है। विभाग में संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता ने आकाशवाणी समाचार के साथ एक भेंटवार्ता में कहा कि पेंशन से संबंधित कुल शिकायतों में 20% से अधिक शिकायतें पारिवारिक पेंशन से जुड़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि उनका विभाग 1 जुलाई से शुरू हुए इस विशेष अभियान के माध्यम से पारिवारिक पेंशन से जुड़ी शिकायतों के 100% और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है।
अगर आप कुटुंब पेंशन भोगी हैं और आपका कोई भी शिकायत है तो आप आइदर हमारे टोल फ्री नंबर जो 1800111960 है उस पर आप शनिवार और रविवार छोड़कर आप किसी भी वीकडेज में सुबह 9:30 से शाम के 5 बजे तक आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा pgportal.gov.in/pension/ इस पर आप जाएं और इस साइट पर आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
आज सवेरे में अब हम आपको खेलों की दुनिया में लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे विंबलडन, जहां पे क्या कुछ हो रहा है ये शगुन से जानते हैं, और फिर मैं आपको फुटबॉल के मैदान में लिए चलूंगा।
राइट, इंडियाज रोहन बोपन्ना एंड हिज ऑस्ट्रेलियन कंपेनियन मैथ्यू एबडन विल किक ऑफ देयर कैंपेन एट द विंबलडन ओपन टेनिस इन लंदन दिस इवनिंग। बोपन्ना एंड एबडन विल टेक ऑन जुविनी मेपेचे पेरिकॉट एंड एड्रियन मैनरिनो ऑफ फ्रांस in the men's doubles first round. The Indo-Australian duo will be competing as the second seeds in the prestigious tournament. Another Indian, Sumit Nagal, will also mark his presence in the men's doubles this evening.
और अब बात यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट की। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट अब पूरे शबाब पर आ चुका है, क्योंकि अब लगभग क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो रखे हैं। कल एक शानदार मैच हुआ जिसमें तुर्की ने ऑस्ट्रिया को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जर्मनी में खेले गए इस मुकाबले में तुर्की के डिफेंडर मेरी डेमरल ने सिर्फ 57 सेकंड के बाद गोल कर यूरोपीय चैंपियनशिप नॉकआउट टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे तेज गोल करने का एक नया रिकॉर्ड बना लिया। क्वार्टर फाइनल में रविवार को तुर्की का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। कल एक और मैच हुआ था, नीदरलैंड ने रोमानिया पर 3-0 की एक बड़ी जीत की और इसके बाद 16 साल में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है नीदरलैंड। नीदरलैंड की टीम 2008 के बाद टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। तो ये थी वो तमाम खबरें जिन पर हमारी नजर रही थी और हमें उम्मीद है कि आज दिनभर के लिए आपको एकदम तैयार कर देंगे। आज सवेरे में अब वक्त है आपके शहर की खबरें जानने का, तो चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ शगुन और फिर मैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के साथ।
यस नवीन, आई विल स्टार्ट विद चेन्नई फर्स्ट। The information technology service firm Capgemini has started construction of a 5,000-seat facility with a capital expenditure of rupees 1,000 crore over the next 3 years. The space is expected to be completed by April 2027. Spread over 600,000 square feet, this facility would support Capgemini's diverse specialist teams, including financial services, engineering, digital cloud, AI, and many more. It would promote a collaborative and engaging work environment, featuring advanced engineering labs, dedicated pods for customer experience center, and specialized onboarding rooms. French multinational Capgemini's Indian team comprises nearly 1,75,000 members working in 13 locations, including Chennai, Coimbatore, Salem, and Trichy in Tamil Nadu, apart from Bengaluru, Bhubaneswar, Hyderabad, and 3 other places. More from Chennai, the Tamil Nadu government has launched TN Rise to create more women-led startups in the rural pockets of state. An initiative of the state-owned Tamil Nadu Women Development Corporation, the special platform will operate with financial assistance from the World Bank. Launching the TN Rise on Tuesday, Minister for Sports Sudhanidhi Stalin said that the state is home for 13.5% of firms led by women in India. Moving on to Bengaluru, Karnataka Revenue Minister Krishna Bairagaura has informed that a task force will be set up at the panchayat level to control the flood situation in 1,763 villages across the state. Addressing the media persons in Mysuru today, he said that these villages are considered problematic during the monsoon rains. The task force will comprise of employees from the Revenue Department, Panchayat Raj Engineering Division, Fire Department, Police Department and from Minor Irrigation Department. A Taluk Level Officer will be the Nodal Officer. The task force is mandated to rush to the villages during floods and also conduct mock drills in advance to foresee vulnerabilities. The Minister said that the Disaster Management Task Force must foresee dangers to men and property and take remedial measures to prevent loss of life and assets. He said apart from the task force, the National Disaster Response Force teams are already deployed in Dakshin Kannada, Kodagu, Belgavi and Bengaluru. The state disaster response force teams are deployed in Bengaluru, Belgavi, Kalaburgi and Mysuru. And now we'll go to Hyderabad. Telangana government has granted remission to 213 prisoners following petitions submitted by their family members to Chief Minister A. Revanth Reddy, requesting the release of their family members who have been languishing in jails for a long time. The Chief Minister responded to their petitions positively and ordered the officials to examine the chances of their early release based on the guidelines set by the union and state governments. An official release stated that the senior officers scrutinized the applications and placed the details of the eligible prisoners for release before the high-level committee. The committee sent the list of prisoners to the cabinet for approval. The cabinet headed by Chief Minister Revanth Reddy approved the names and granted remission to the prisoners. After the governor gave his consent to the list, the state government issued orders granting remission to the prisoners late last evening. According to the orders, 213 prisoners will be released from Cherlapalli jail later today. Of these, 205 were sentenced to life imprisonment and 8 others were sentenced to lesser terms. All of them are already provided skill development training in various professions in the jail and were given counseling to reintegrate into the society. And now, what do we have from Delhi, Mumbai and Kolkata, Naveen?
दिल्ली की खबरों में सबसे पहले दिल्ली महिला आयोग की बात। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के बंद होने और उनके इस्तीफे के बाद महिला आयोग की स्थिति पर ध्यान देने का आग्रह किया। सुश्री मालीवाल ने कहा कि 24 घंटे सातों दिन काम करने वाली ये हेल्पलाइन अब बंद पड़ी है। बात दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए पिछले 4.5 साल में 2 करोड़ पेड़ लगाए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस साल 64 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें 7 लाख से ज्यादा पौधे निःशुल्क लोगों को वितरित किए जाएंगे। श्री राय ने बताया कि इस अभियान की शुरूआत 11 जुलाई से नरेला विधानसभा क्षेत्र से की जाएगी और इस अभियान का पहला चरण 9 अगस्त तक चलेगा। अगली खबर, दिल्ली सरकार राजधानी में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में रोहिणी सेक्टर 26, शास्त्री पार्क और कड़कड़डूमा में 3 नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवा रखी है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कल इसकी आधारशिला रखी। रुख करते हैं मुंबई का। मुंबई माझी लड़की बहन योजना पात्रता मानदंड में छूट। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार भले ही अंतिम तिथि अगस्त तक बढ़ा दी गई है, पात्र पाए जाने पर लाभार्थी को वित्तीय सहायता मिलेगी जुलाई से और सरकार ने इसकी आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा है कि राज्य ने पिछले साल पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 20,50,000 किसानों को जोड़ा है। कल राज्य विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल से अधिक समय से पहले 14वीं किस्त जारी होने पर 70 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक रामकरण यादव ने मुंबई मंडल से 5, भुसावल मंडल से 7 और नागपुर पुणे और सोलापुर मंडल से 1-1 कर्मचारी सहित मध्य रेलवे के 15 कर्मचारियों को कल सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। रुख कोलकाता का। पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में उन सड़कों का जीआईएस मैपिंग और सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है जिनका रखरखाव पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। इस दायरे में सभी ग्रामीण सड़कें आती हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की कई सड़कों की खराब हालत पर दुख जताया था और एक डेटा रिपोजिटरी बनाई गई थी जिसमें सड़कों और उनके रखरखाव का विवरण रखा जाएगा। और अब बात करते हैं दिल्ली के मौसम की। दिल्ली में मौसम गर्मी का है। 35 डिग्री की टेम्परेचर रहने की संभावना है। न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। बारिश के आज आसार बन रखे हैं। नमी 81% बनी रहेगी और हवा की रफ्तार जो होगी वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। बहरहाल आज बारिश की उम्मीदें हैं जो हम कल से लगा रहे हैं। मुंबई का रुख करते हैं शगुन, तो मुंबई का अधिकतम तापमान 32, न्यूनतम 25 रहेगा। कोलकाता में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का क्या हाल है?
राइट, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 29 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 37 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन अगेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 21 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस। Now, talking about Hyderabad, it is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees Celsius and a maximum of 33 degrees Celsius.
कहते हैं कि इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता।
I agree with you.
अना शकुन,
totally.
और इतिहास सिर्फ अपनी घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसी कड़ी में आज जानेंगे 3 जुलाई को देश दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। आज के दिन 1661 में मुंबई और तंजौर इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था और यह दिया था पुर्तगाल ने।
एंड इन 1948 HMS Shields वाज टेकन ओवर बाय इंडियन नेवी।
1819 में वो आज का दिन था जब अमेरिका ने पहला बचत बैंक बैंक ऑफ सेविंग इन न्यूयॉर्क शुरू किया था।
In the year 1962, American businessman Sam Walton opened the first Walmart, which is the largest retail sales chain in the United States.
स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने 1884 में अपना पहला स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स प्रकाशित किया था और 1886 में वो आज ही का दिन था जब न्यूयॉर्क ट्रिब्यून छपाई मशीन का इस्तेमाल करने वाला पहला अखबार बना था।
In 1964, U.S. President Lyndon B. Johnson signed the Civil Rights Act.
1897, इतालवी वैज्ञानिक मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पेटेंट करवाया था।
In 1972, शिमला नॉन-आर्म अग्रीमेंट ऑन कश्मीर was signed between इंदिरा गांधी एंड ZA भुट्टो।
और क्या आप जानते हैं कि लंदन में पहली बार रंगीन टीवी का कार्यक्रम कब हुआ था? ये प्रसारण हुआ था आज ही के दिन और वर्ष था 1928।
राइट। In the year 1979, the construction of the second Howrah Bridge, also known as Vidyasagar Setu, began.
खेलों की दुनिया की बात करें तो महेश भूपति और मैरी पियर्स ने वर्ष 2005 में विंबलडन टेनिस का मिक्स्ड डबल खिताब जीता था।
एंड इन 1997 तमिल एक्टर शिवाजी गणेशन गॉट 1996 दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा।
तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से और अब याद करते हैं उन व्यक्तियों को जो जुड़े हैं कहीं ना कहीं आज के दिन से।
ओके, टुडे वी आर रिमेम्बरिंग जिम मॉरिसन हु वाज एन अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर एंड पोएट हु वाज द लीड वोकलिस्ट एंड प्राइमरी लिरिसिस्ट ऑफ द रॉक बैंड द डोर्स। जिम मॉरिसन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फ्रंटमैन इन द रॉक हिस्ट्री। द सॉन्ग दैट वी आर प्लेइंग फॉर यू इज व्हेन द म्यूजिक्स ओवर बाय हिम।
आज गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि है। असली नाम कुलभूषण पंडित था, पुलिस इंस्पेक्टर थे, नौकरी छोड़ दी, फिल्म इंडस्ट्रीज में आ गए। राजकुमार मुंबई में जिस थाने में काम करते थे, बहुत अच्छा किस्सा है, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था और एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए, राजकुमार से बातचीत की, उनके अंदाज से बहुत प्रभावित हुए और अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दे दिया। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान के लोरलाई में कश्मीरी पंडित के रूप में हुआ था। पहली फिल्म थी रंगीली और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में उन्होंने अभिनय दिया, लेकिन उनके डायलॉग बहुत मशहूर थे, तो क्यों ना पहले उनके कुछ डायलॉग सुने जाए और फिर सुनते हैं कि क्या कुछ उन्होंने और किया।
हमें देवता मत कहो बाबा, हमें अमीरों की ताकत का नहीं गरीबों की कमजोरी का एहसास है, और फिर देवता तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है, हम तो सिर्फ तकदीर बताते हैं। रघु तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहाँ जाकर नौकरी शुरू कर देना।
और राणा साहब इंटरव्यू?
हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मारकर तबादला किया जा सकता है, कलेक्ट्री तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे।
ये राजकुमार के कुछ बेहतरीन डायलॉग थे, लेकिन आज हम उन्हें याद कर रहे हैं पाकीज़ा के इस खूबसूरत गीत के साथ।
चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो,
हम भी तैयार चलो।
And listeners, today we are also remembering Rudy Valley, who was an American singer, saxophonist, band leader, actor and entertainer. He was born on July 28 in the year 1901. He was the first male singer to rise from local radio broadcasts in New York City to national popularity as a crooner. And you're listening in the background to his song, You're Just Another Memory.
A आज हम करगिल युद्ध के वीर सैनिक परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज कुमार पांडे को भी याद कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे को यह सम्मान सन 1999 में मरणोपरांत मिला था। पाकिस्तान के साथ करगिल का युद्ध बेहद कठिन और ऊंची चोटियों पर लड़ा गया, जो बर्फ से ढकी और दुर्गम थी, और इसी युद्ध के कठिन मोर्चों में से एक मोर्चा था खालुबार, जिसको फतह करने के लिए कमरकस कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपनी गोरखा राइफल्स के साथ अगुवाई करते हुए दुश्मन से जूझ गई और जीत कर ही माने। भले इस कोशिश में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन उन्हें हम कभी नहीं भूल पाएंगे और उनका जज्बा हमेशा यही कहता रहेगा।
दिल करता ओ यारा दिल दारा मेरा दिल करता ओ यारा दिल दारा मेरा दिल करता ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिल दारा मेरा दिल करता ओ यारा दिल दारा मेरा दिल करता।
And today, it's Tom Cruise's birthday, the American actor and producer. He's known for movies such as Top Gun, The Color of Money, Rain Man, and also The Vampire Chronicles, Mission Impossible, and Jerry Maguire. And for you, we are playing this popular theme from the movie Mission Impossible, Dead Reckoning. And friends, it's also the birthday of the actor Patrick Wilson, who began his career in 1995 starring in Broadway musicals. He is known for his roles in The Full Monty, Oklahoma. Wilson also appeared in films such as The Phantom of the Opera, Hard Candy, Little Children, Watchmen and The A-Team. He gained wider recognition for his role starring in the movie Insidious film series and also playing Ed Warren in The Conjuring Universe, which are both horror franchises.
शोभना जी, हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक, अभिनेता, निर्देशक और संगीत निर्देशक अमित कुमार का जन्मदिन है। गायक किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार अपने पिता की तरह कोलकाता में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान गाना गाया करते थे और एक दिन उनकी पहचान हो गई और फिर उन्हें मुंबई लाया गया। वो थे लाने वाले उत्तम कुमार और उत्तम कुमार ने फिर उनको कभी वापस कोलकाता नहीं जाने दिया। बहुत से फिल्में गीत गाए हैं अमित कुमार ने, लेकिन उनपे हमेशा किशोर कुमार की छाप रही है। लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा गीत हम चुनकर लेकर आए हैं और आज हम उनके जन्मदिन के साथ उनको याद कर रहे हैं। अमित कुमार,
बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम।
ये आवाज थी अमित कुमार की, जिनका आज जन्मदिन है। अब मैं, नवीन और शगुन आपको बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ छोड़े जा रहे हैं। सुकरात ने कहा था कि गिरना असफलता नहीं है, असफलता तब आती है जब आप वहीं रहते हैं जहां आप गिरे थे।
राइट, Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in.
आज के संत में बस इतना ही. अपने एडिटर ओमेश ओमवेश और प्रोडक्शन असिस्टेंट राजेश के साथ अब मुझे यानी नवीन और शगुन को दें इजाजत.
नमस्कार.